नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हुई। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए। भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर पहली प्रभामंडल कक्षा पूरी की। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 आज नई दिल्ली में शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए और विम्बल्डन टेनिस में रोहन बोपन्ना और सुमित नागल आज अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ऐतिहासिक लगातार तीसरा कार्यकाल गति और निरंतरता के लिए जनादेश है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 3 गुना गति से काम करेगी और देश को विकास के अगले स्तर पर ले जाएगी तथा 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाएं अत्यंत गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है।
लोकसभा में 2 दिनों तक चली बहस में विपक्ष ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों पर सरकार से जवाब देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 116 हो गई है। यह भगदड़ कल सिकंदरा राव तहसील के फुलराई गांव में कथावाचक भोले बाबा के सत्संग में हुई। अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ तब मची जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की एक झलक पाने की कोशिश की। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 72 शवों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के कारणों का पता लगाने और विषय में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए आगरा जोन के अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। हाथरस जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 057-22-22-7041 और 057-22-22-7042। इस घटना पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि घटना में महिलाओं और बच्चों समेत श्रद्धालुओं की मौत दिल दहला देने वाली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में लोगों की मौत के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया।
यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी, और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी।
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे हाथरस जाएंगे। वे वहां जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे। श्री योगी बाद में आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी। राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। श्री देवड़ा ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। भारत का पहला सौर अभियान आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी L1 प्वाइंट में अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा की परिक्रमा पूरी कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि कल इसके स्टेशन कीपिंग कौशल ने दूसरी प्रभामंडल कक्षा में निर्बाध स्थानांतरण सुनिश्चित किया। आदित्य L1 अभियान को 2 सितम्बर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह लैग्रेंजियन प्वाइंट L1 पर एक भारतीय सौर वेधशाला है। इसे 6 जनवरी 2024 को इसके लक्षित प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश कराया गया था। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 अंतरिक्षयान प्रभामंडल कक्षा में L1 प्वाइंट की परिक्रमा पूरी करने में 178 दिन का समय लेता है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य AI द्वारा प्रस्तुत बहुमुखी चुनौतियों और अवसरों को सामना करने में नए मानक स्थापित करना है। यह शिखर सम्मेलन विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षा जगत के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय AI विशेषज्ञों को AI के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के बारे में परिज्ञान साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। यह आयोजन AI की जिम्मेदार उन्नति, वैश्विक AI हितधारकों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के प्रति भारत सरकार के समर्पण पर जोर देता है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन आज AI अनुप्रयोग और शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं के गहन चर्चाओं पर आधारित विविध प्रकार के सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन कल प्रतिभा को पोषित करने और AI नवाचारों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 5 माओवादी मारे गए। उधर सुरक्षा बलों ने राज्य के सुकमा जिले के विभिन्न हिस्सों से 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कल सुकमा जिले में एक महिला समेत 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ पवित्र गुफा की 52 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। इस यात्रा का 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समापन हो जाएगा। प्रशासन ने इस वर्ष की यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5,725 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज तड़के 238 वाहनों के काफिले में श्री अमरनाथ जी की गुफा की ओर अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ देश के अन्य हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और हजारों तीर्थयात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा मंदिरों के शहर जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास, सरस्वती धाम और अन्य आवासों में रहने के लिए व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना पहुंच गए हैं। वे कल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व और भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री अलीबेग बकायब ने डॉक्टर जयशंकर के आगमन पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री ने कल कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुरत नटुलो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न प्रारूपों में एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की। दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री डीक शूफ को पदभार संभालने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वह नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, गतिशीलता तथा नई और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत नीदरलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण विंडो की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत एक ही बार के पंजीकरण तथा नए और नवीनीकरण छात्रवृत्तियों के आवेदन के लिए की गई है। इस वर्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। 28 जिलों के 11 लाख से अधिक लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तिनसुकिया और धेमाजी में और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। वहीं विश्वनाथ में एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है। बाढ़ के कारण 84 राजस्व क्षेत्र के कुल 2,208 गांव प्रभावित हुए हैं। पूरे राज्य में 42,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी संबंधित मंत्रियों विधायकों को बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने तथा राहत और बचाव कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने 140 राहत शिविर और 359 राहत वितरण केंद्रों की भी स्थापना की है। खेलों में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डन आज शाम लंदन में विम्बलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में अपना पहला मैच खेलेंगे। पुरुष युगल के पहले दौर में बोपन्ना और एब्डन का मुकाबला फ्रांस के जियोवोनी मप्तेशी पेरिकॉर्ड और एंड्रियन मन्नरिनो से होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया की ये जोड़ी टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में भाग ले रही है। वहीं भारत के सुमित नागल भी आज शाम पुरुष युगल में अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। वे सर्बिया के अपने जोड़ीदार लाजोविक के साथ आज पहले दौर में पेड्रो मार्टिनेज और जाम मुनार की स्पेनिश जोड़ी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। श्रीलंका में तीर्थयात्रियों के लिए मन्नार में मधु श्राइन में पारगमन घरों के निर्माण के लिए भारतीय अनुदान के तहत अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय में सचिव श्री डब्ल्यू एस सत्यानंद ने परियोजना से संबंधित तौर तरीकों को औपचारिक रूप देने के लिए कल राजनयिक पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। श्राइन में कम लागत वाली ट्रांजिट हाउसिंग निर्माण परियोजना के लिए अतिरिक्त अनुदान के बाद इस परियोजना के तहत कुल आवंटित राशि 40 करोड़ रुपए हो गई है। श्रीलंका में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने 9 अनुदान परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है। मन्नार की मधु श्राइन में कम लागत वाली ट्रांजिट हाउसिंग निर्माण परियोजना उन 9 परियोजनाओं में से एक है। परियोजना अभी जारी है और ट्रांजिट हाउस जिनकी कुल संख्या 96 होगी उनका निर्माण कार्य अभी विभिन्न चरणों में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद फरहत। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान लिखता है सत्संग के बाद भगदड़, 116 लोगों की मौत। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है लापरवाही का सत्संग, भगदड़ में गई जान। वहीं अमर उजाला सचित्र लिखता है 50,000 से ज्यादा लोगों की जुटी थी भीड़, मृतकों में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिलाएं। जनसत्ता ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचने की खबर दी है। पत्र लिखता है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों में पहुंचा मॉनसून। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने अलकनंदा में उफान की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है बद्रीनाथ मंदिर के निकट भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश में दूसरा राज्य बना बिहार। दैनिक भास्कर ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। वहीं दैनिक जागरण के खेल के पन्ने की खबर है आज स्वदेश पहुंचेगी विश्व विजेता टीम, चक्रवाती तूफान के कारण बारबाडोस में फंसे थे खिलाड़ी। दैनिक भास्कर ने शोध शीर्षक से खबर दी है दिमाग से नियंत्रित होने वाला बायोनिक पैर का ट्रायल सफल, इससे सामान्य लोगों की तरह चल सकेंगे पैरों से दिव्यांग लोग।
धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हुई। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए। भारतीय सौर मिशन आदित्य एलवन ने सूर्य पृथ्वी एलवन बिंदु के चारों ओर पहली प्रभामंडल कक्षा पूरी की। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 आज नई दिल्ली में शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 माओवादी मारे गए। और विम्बलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और सुमित नागल आज अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मैच खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।